रासायनिक खेती जहर है जहर है जहर है।
नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अमित आपका दोस्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ खेती और किसानी पर ही चर्चा नहीं करते, बल्कि शाश्वत यौगिक खेती जीवन जीने की कला सिखाती है। किस प्रकार से हमारा चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, हम ये सारी बातें व्यवहार में लाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही सब तो सीख रहे हैं, क्योंकि अंततः हमारा व्यवहार, हमारी सोच प्रकृति पर असर डालती है और फिर प्रकृति हमें अच्छी पैदावार, अच्छी फसल देती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व और चरित्र का भी निर्माण करें। एक समय था जब हम खेतों में जब उतरते थे तो हंसते और गाते काम करते थे, एक दूसरे का सहयोग देते थे, मगर आज जब खेतों की ओर रुख करते हैं तो एक भूत हमारे सर पर सवार होता है। एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एक दूसरे पर चिल्लाना, एक दूसरे को दोष देना, जाने कैसा व्यवहार लेकर के हम अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। गुस्से पर हम कार्यक्रम में चर्चा करते आए हैं और आज भी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमार ओमकार चंद भाई। भाई जी, आपका पुनः स्वागत है।
ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी, हम पिछली दो कड़ियों से गुस्से के ऊपर चर्चा करते आए हैं। गुस्सा आपने बताया कि कितना हानिकारक है, गुस्सा है क्या, आपने इस पर भी बताया। हमारा मूल स्वभाव शांति है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी गुस्सा तो एक बहुत बड़ा विकराल रूप है, पूरी सृष्टि पर छाया हुआ है, इतनी आसानी से तो इस शत्रु से नहीं निपटा जा सकता। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गुस्से के प्रकार कितने हो सकते हैं, क्योंकि कई बार इंसान गुस्से में आग बबूला होता है तो कई बार चिड़चिड़ा रहा होता है, कई मौन गुस्सा ही दिखा देते हैं, मुंह फेर लेते हैं, तो कितने प्रकार के यह गुस्सा होता है?
देखा गया है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तरह की मीठी कड़वी बातों से हमें दो चार होना पड़ता है जो हमें गुस्सा दिलाती हैं, और जब गुस्सा आता है तो वो दो रूप से बाहर निकलता है। गुस्सा एक तो है गुस्सा निकालना और एक है गुस्सा पी जाना। एक है गुस्सा में आकर हम अपनी आवाज ऊंची करके बोलते हैं, हाथ उठा देते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, जो सबको दिखाई देता है, इसे एग्रेसिव एंगर कहते हैं, जो बाहर का गुस्सा है, इसे तो सब समझते हैं। लेकिन एक और गुस्सा है जो अंदर का गुस्सा है, जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं कि गुस्सा पी जाना, कि हम अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हैं और अंदर ही अंदर बदले की भावना लेकर काम कर रहे हैं, और ये दोनों ही तरह के गुस्से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये गुस्से ऐसे हैं कि जैसे आप किसी ने हंसी में कह दिया कि अगर आपने गुस्सा बाहर निकाल दिया तो ऐसे है कि जैसे आपने काले कोट वाले के पास आप गए और आपने गुस्सा पी लिया, तो ऐसा है जैसे आपको सफेद कोट वाले के पास जाना पड़ा है। तो ये दोनों ही गुस्से नुकसानदायक है। जब हम बाहर गुस्सा निकाल देते हैं तो उसका क्या नुकसान है, मैंने पहले भी बताया, जैसे हार्ट के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचता है, ऐसे व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के बहुत चांसेस है, किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यहां तक कि इंसान को पैरालिसिस भी हो सकता है, खून खराबा, मर्डर तक हो सकते हैं, जेल की और अदालतों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ये तो पता है, लेकिन जो अंदर का गुस्सा है जिसे हम कहते हैं सप्रेसिव एंगर, उसके कारण भी उतने ही नुकसान होते हैं। उससे भी आज पता चला है रिसर्च में कि उसके कारण भी कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। वो अंदर का गुस्सा अंदर इतना इकट्ठा होता जाता है कि एक दिन अचानक प्रेशर कुकर की तरह वो फट जाता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दोनों गुस्से ही नुकसानदायक हैं और दोनों गुस्सों को छोड़कर हमें अपना व्यवहार पॉजिटिव बनाना चाहिए, असर्टिव। अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए लेकिन मन का संतुलन बनाकर। किसी ने कहा कि गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन कब गुस्सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन शब्दों में करना चाहिए, इसकी समझ भी हमें होनी चाहिए। गुस्सा एक एनर्जी है
जी,
बहुत बड़ी एनर्जी है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा शरीर में ऐसा हमें लगता है कि एक ही आदमी, मैं 6 आदमियों का सामना कर सकता हूं, इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आती है,
आवेग के साथ
आवेग आ जाता है। लेकिन उस ऊर्जा का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो वो हमें फायदा भी पहुंचा सकती है, लेकिन उस वक्त हम चिल्लाने में, दूसरों के ऊपर रोब झाड़ने में, लड़ाई झगड़े में उसे इस्तेमाल करते हैं। उसे थोड़ा सा डायरेक्शन देके उसको कोई शारीरिक काम में लगाएं, उसे खेतों में जाकर हम कोई काम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कोई डांस करें, कोई और कार्य कर लें, तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो सकता है और वो एनर्जी पॉजिटिव वे में जो कमजोरी थी वो हमारी ताकत भी बन सकती है।
लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम गुस्से वाली भावनाओं के साथ ही सब काम ना करें।
हाँ, ये
भावनाओं के साथ अगर हम खेत में जाते हैं या कुछ और करने लगते हैं तो फिर वहां पर हम दूषित कर देंगे वातावरण।
हाँ, गुस्सा जब आ गया तो उसके कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, उसे बेकाबू ना होने दे। गुस्से के संकल्प आ गए, ऐसी चीज हुई जो आपको गुस्से में ला रही है, लेकिन उसी वक्त मन को समझाने की जरूरत है। अपना ध्यान उन चीजों से, लड़ाई झगड़ों की चीजों से हटाकर किसी अच्छी तरफ उस एनर्जी को लगाएंगे तो फायदा हो सकता है।
जी भाई जी, आपने बताया एक होता है जिस एक ऐसा गुस्सा होता है जो कि आचरण व्यवहार में दिख जाता है, जो कि खाली खोट वाले के पास ले जा सकता है, और एक होता है जो गुस्सा पीने की जो आपने बात कही कि अंदर ही अंदर हम क्रोध का घूंट पी करके रह गए, जो कि फिर बाद में एक ज्वालामुखी के रूप में फटता है। तो ये जो दमन करने की बात है गुस्से को, अगर हमने दमन कर लिया, उस वक्त हमने क्रोध का घूंट पी लिया, तो ये उस वक्त हम क्या ऐसा करें जिससे क्रोध नियंत्रित हो जाए और अंदर भी नुकसान ना हो, न सेहत को नुकसान हो और न ही उस क्रोध का कभी ज्वालामुखी बने, उसे शीतल कैसे किया जाए उस परिस्थिति को?
जब ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें गुस्सा दिलाती है, उस वक्त उसे अंदर रखने के बजाय अपने मन को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उस वक्त अगर हम सोचें, अपने मन को समझा दें, ये जो घटना हुई इसमें भी कोई ना कोई फायदा है, ये परिस्थिति मुझे कोई ना कोई बेनिफिट जरूर देगी, अगर हम ये चश्मा लेके चलेंगे, ये नजरिया लेके चलेंगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है और इस घटना से मुझे कोई ना कोई फायदा ढूंढना है, तो वो हमें जरूर फायदा देगी। क्योंकि नजरिए में, व्यक्ति की सोच में बहुत फर्क है, सोच से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी ने कहा कि हम एक जैसे हालात होने पर भी एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देता है और एक व्यक्ति दम तोड़ देता है। एक व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्से का शिकार हो जाएगा और एक व्यक्ति वहीं पर उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए भी उसमें से पॉजिटिव ढूंढ लेगा, हार को जीत में बदल लेगा। इसलिए उस वक्त अपने मन को समझाएं, उसी अच्छे अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक विचार दें कि तुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से कोई फायदा होने वाला नहीं है, फायदा केवल शांति में है। इस तरह की ट्रेनिंग मन को दें तो मैं समझता हूं बड़े आसानी से हम गुस्से पर ऐसी परिस्थिति में काबू कर सकते हैं। और इंसान के पास जो होता है वही दूसरे को देता है। अपने अंदर इतना परमात्म प्यार भर लें, इतना प्यार भर लें कि हमारे व्यवहार से वही बाहर जाए। अगर हमारे अंदर गुस्सा होगा तो हम गुस्सा देंगे, प्यार होगा तो प्यार देंगे। तो क्यों ना अपने अंदर ऐसे विचार लाएं जो प्यार के हों, भाईचारे के हों, उमंग उत्साह के हों, अच्छे व्यवहार के हों, तो गुस्सा खत्म हो सकता है।
जी भाई जी, आपसे चर्चा के दौरान पिछले कार्यक्रमों में भी जब चर्चा की थी तो आपने एक तो बहुत अच्छी बात कही थी कि कारण से बड़ा उसका जो दुष्परिणाम है उसको यदि उस वक्त सोच लिया जाए तो क्रोध को शांत किया जा सकता है। दूसरा आपने कहा कि हमें मन को ट्रेनिंग देनी होगी और सकारात्मकता का चश्मा पहनना होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों के लिए कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा नुकसान हो गया हो, उस नुकसान की भरपाई अब कैसे की जाएगी, इस तरह के ख्याल आते हैं, तो क्या हम ऐसा करें कि ये सकारात्मकता का चश्मा हमें याद आ जाए, या क्या हम करें कि जो हमारे मन को जो प्रशिक्षण देना है कि तुमको तो सकारात्मक विचार ही करने हैं मेरे मन, ये बात कैसे स्मृति में लाई जा सकती है?
ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि मन को कैसे याद आए कि उसे पॉजिटिव ही सोचना है।
हाँ जी,
क्योंकि अक्सर जब हम गुस्से के अधीन होते हैं, जब ये भूत सवार होता है, तो हमारा दिमाग, हमारा मन उतना अच्छी तरह से कार्य नहीं करता
जी।
कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जब वो आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जब वो जाते हैं तब लोग खुश होते हैं, और गुस्सा करने वाले लोग दूसरी ही श्रेणी के होते हैं। गुस्से की शुरुआत मूर्खता से और इसका अंत पश्चाताप से होता है। जब गुस्सा आता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो पश्चाताप के रूप में आता है। पश्चाताप यानी काम करने के बाद सोचना कि ये मैंने क्या कर दिया, हाय मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब हमें रियलाइज होता है कि इसका कितना कितना नुकसान है, और नुकसान इतना है, इतना नुकसान है कि जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो कोई भी कार्य उस वक्त ठीक ढंग से नहीं कर सकता। उसकी मत मारी जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे सही क्या है, गलत क्या है, इसकी भी पहचान नहीं रहती। एक बार एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को समझाने के लिए कि गुस्से के क्या नुकसान है, एक पानी का बर्तन लिया और उसमें दोस्त को कहा कि इसके ऊपर देखिए आपको क्या दिखाई देता है। दोस्त ने कहा कि मुझे अपना प्रतिबिंब, चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा है। अब उस दोस्त ने उस पानी के बर्तन को आग के ऊपर रख दिया, पानी उबलने लगा। अब वो कहता है कि अब देखिए आपको क्या नजर आता है। तो वो जैसे ही देखने लगा तो उसे कुछ नजर नहीं आया, और ही जो गर्म भाप थी उससे उसका चेहरा जलने लग गया। उसी तरह जब हम गुस्से में गर्म होते हैं, गुस्से में उबलने लगते हैं, हमें कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता, सही और गलत की पहचान हमारी खत्म हो जाती है। कोई अच्छा डिसीजन गुस्से के वक्त हम नहीं ले सकते, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, और दोस्ती खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसके संबंध खत्म हो जाते हैं, अच्छे संबंध उसके नहीं रहते किसी के साथ
जी।
दोस्तों की संख्या कम हो जाएगी, दुश्मन ज्यादा बढ़ जाएंगे, और सबसे बड़ा नुकसान गुस्सा करने से, गुस्सा करने वाले के चाहने वाले बहुत आहत होते हैं जब उनके साथ गुस्से से व्यवहार किया जाता है। साथ साथ कभी आपने देखा हो गुस्से वाला व्यक्ति मुस्कुरा भी नहीं सकता, खुशी क्या चीज है उसे पता ही नहीं है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करेगा, और कई बार वो लड़ाई झगड़ा इतना भयंकर रूप ले लेता है कि मर्डर तक, खून खराबा तक हो जाता है। दुनिया में आज कितने नुकसान है, जो आतंकवाद है, हिंसा की समस्या है, कितनी हड़ताल लोग करते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, इन सब के पीछे गुस्सा ही तो छिपा हुआ है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत लेवल पे भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक कलेक्टिव वे में भी एक देश और एक सिस्टम को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये एक रिसर्च हुई है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो कम से कम 14 किस्म के नुकसान हमारी सेहत के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर गुस्सा करने से पड़ते हैं। जब शरीर के ऊपर नुकसान हो सकते हैं तो बहुत नेचुरल है कि हमारी फसल, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे पशु पंछी सबके ऊपर इंसान का गुस्सा करना प्रभाव डालता है। सबसे बड़ा प्रभाव जो हमारी सेहत पे पड़ता है, जब व्यक्ति गुस्से का शिकार होता है, गुस्सा करने के 2 घंटे तक उसे हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं, वो दिल की बीमारियों के ज्यादा शिकार होते हैं। दिल की बीमारियां हो गई, यहां तक कि आपके किडनी, आपके लंग्स तक गुस्से का प्रभाव पड़ता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, जिन्हें आजकल लोग साइकोसोमेटिक डिजीज कह देते हैं, 70-80% बीमारियां यही हैं जो हमारी गलत सोच, गलत धारणाओं, गुस्से जैसी बुरी आदतों के कारण होती हैं। जब गुस्सा आता है, आपने देखा होगा व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है, भृकुटी तन जाती है, मुठियां कस जाती हैं, और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, उसकी सारी सांस बड़े तेज गति से लेने लगता है, और साथ साथ जब व्यक्ति गुस्सा करता हो उसे नींद भी नसीब नहीं होती, उसके बॉडी के जो सेल्स हैं वो बर्न हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, उसे नींद नहीं आती क्योंकि बार बार वही थॉट्स, वही संकल्प कि मैंने बदला लेना है, मैंने उसे सेट करना है, मैंने उसको सीधा करना है, मैंने उसको मजा चखाना है, वही बार बार थॉट्स मन में चलते रहते हैं, तो व्यक्ति को नींद भी नहीं आती। और गुस्से को अगर हम छोड़ दें, सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम अथक बन सकते हैं, क्योंकि गुस्सा आने से हमारे गुस्सा करने के बाद कितनी थकावट आदमी को महसूस होती है, थका थका वो रहता है, सारी एनर्जी उसने गुस्से में ही अपनी वेस्ट कर दी। अगर हम गुस्से को जीत लें तो हम कभी थकेंगे ही नहीं। हर दिन दिन के स्टार्टिंग में ही सवेरे ही अपने आप को याद दिला दें कि आज मैंने गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, किस तरह के भी लोग आए, कैसी भी घटनाएं घटें, कैसी भी परिस्थितियां हों, मुझे शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है, और अपने दिन की पूरी प्लानिंग करें, अपने दिन को ऐसे ही ना बिता दें, कोई ना कोई एम लेके, उद्देश्य लेके अपने दिन को बिताएं कि आज मुझे ये कार्य करना है, इस वक्त ये कार्य करना है। जितनी अच्छी प्लानिंग हम अपने दिन के कार्यों की करेंगे, हम व्यस्त रहेंगे, अपने मन को कोई ना कोई अच्छी सोच देते रहेंगे
जी।
तो वो अभ्यास जब गुस्से वाली परिस्थिति आएगी हमें उस वक्त सकारात्मक रहने में बहुत मदद कर सकता है। इसलिए ये केवल उसी वक्त के लिए नहीं है कि जब गुस्सा आए तभी हम सोचें, बल्कि सारा दिन अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ऐसी स्थिति हो जाए तो उसमें कैसे मैंने रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस वक्त सोचना है, उसके लिए पहले से ही अपनी पूर्व योजना बनाने की जरूरत है। और एक बार एक जो हमें लगती है कि लोग हमें गुस्सा दिला रहे हैं, वो परिस्थिति हमें गुस्सा दिला रही है, ये जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी कि घटना ही ऐसी थी, सिचुएशन ही ऐसी पैदा हो गई, वो लोग ही ऐसे थे जो मुझे गुस्सा दिला गए, ये भी एक गलत सोच है
जी।
हमें इससे निकलना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप उसे इसके लिए इजाजत ना दें। कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अपसेट नहीं कर सकता, अशांत नहीं कर सकता, जब तक आप खुद उन्हें इसके लिए परमिशन ना दें। मैं ही कारण हूं मेरे गुस्से का, दूसरे कारण नहीं है। अगर दूसरे लोग कारण हैं तो इसका मतलब है मैंने अपना रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में दे दिया है, वो चाहें तो मैं शांत रहूं, लोग चाहें तो मैं गुस्से में आ जाऊं।
जी, जी।
आज से हम संकल्प लें कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है।
जी, आपने बहुत सुंदर बात की कि यदि कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, इसका मतलब हमारे ही मन बुद्धि का नियंत्रण जो है वो हमने किसी और को सौंप दिया है, और गुस्सा करने का कारण केवल मैं ही हो सकता हूं जब तक कि मैं इजाजत ना दूं किसी और को अपना मन डिस्टर्ब करने के लिए। पर इस बात को स्वीकार कैसे किया जाए ओमकार भाई, क्योंकि ये बात मान लेना कि मैंने ही गुस्सा किया, दूसरे का कोई दोष नहीं था, ये एक बहुत सामान्य, अगर देखा जाए सामान्य मनुष्य की नजर से तो बड़ा कठिन है कि वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि नहीं, गुस्सा तो मैंने किया, सामने वाले का तो कोई दोष नहीं था, भले उसने कोई नुकसान कर दिया, भले उसने कुछ अपशब्द बोल दिया।
ये आज हमारी नेचर बन गई है, आदत में हमारे शुमार हो गया है कि हम कभी भी अपनी कमियों के लिए खुद को जिम्मेवार नहीं मानते, जिसे कहते दोषारोपण कि दूसरे ही जिम्मेवार हैं। ये एक बचने का तरीका है, जब तक ये बहाना हम बनाते रहेंगे कि दूसरे ही कारण हैं, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, इसका मतलब हम इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। मान लो किसी को दूसरी बीमारी शारीरिक व्याधि आ जाए और वो कारण बताए कि वातावरण ही ऐसा है, बाहर की परिस्थितियां ही ऐसी हैं, आजकल का खाना ही ऐसा है, इसलिए मैं बीमार हो गया, नहीं, डॉक्टर उसे कहेगा कि अब बीमार हो गए हो तो दवाई लीजिए। आप दूसरों को दोष देके, दूसरों के ऊपर आरोप लगा के कि ये कारण है, आप बीमारी से नहीं बच सकते और बीमारी का इलाज नहीं करा सकते। मान लो दूसरे भी कारण हैं, लेकिन बीमारी तो मुझे हुई है ना,
हाँ।
नुकसान तो मेरा हो रहा है,
हाँ।
तो इसलिए इलाज मुझे करना है। मैं ये कहके कि वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर रहा, बल्कि ये मान के बैठ गया हूं कि बीमारी तो होगी ही होगी, क्योंकि वो दूसरों ने मुझे दिलाई है। जिस घड़ी हम ये मान लेते हैं कि नहीं, मेरी किसी भी दुख तकलीफ समस्या का कारण दूसरे नहीं मैं हूं, तो इसका मतलब है कि मैं अब समाधान की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अगर हमने असली में गुस्से को छोड़ना है, अगर हम ये मानते हैं कि गुस्सा बुराई है, इससे हमें दूर रहना चाहिए, तो ये बात भी जरूर मान लीजिए कि गुस्से का कारण भी मैं ही हूं, मुझे ही इसे काबू करना है, मुझे ही इसे कंट्रोल करना है।
जी जी जी। तो दोस्तों, ओमकार भाई हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो एक बीमारी है, और जब बीमारी आ जाती है तो बीमारी का इलाज भी जरूर होता है। इसे विकार कहा गया, इसे अग्नि कहा गया, इसे ताप कहा गया, और इसके ताप में दूसरे तो जलते ही हैं, लेकिन उनसे पहले हम खुद जल जाते हैं। और जिस तरह से अच्छी अच्छी बातें हमें ओमकार भाई बता रहे हैं, तो हम ही इस बात की जिम्मेदारी लें कि हमें सकारात्मकता का चश्मा पहनना है और परिस्थितियों के वश नहीं होना है। अपने मन का नियंत्रण, खुद को गुस्सा दिलाने का नियंत्रण जो है वो दूसरों के हाथ में नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये नियंत्रण हमने दूसरों के हाथ में दिया तो हमारा जीवन भी दूसरों के हाथों में चला जाएगा, और ऐसी गुलामी हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ओमकार भाई, हमने गुस्से के प्रकारों की चर्चा की है, आपने बताया एक एग्रेसिव होता है, एक सप्रेसिव होता है, क्या गुस्से के कोई रूप भी होते हैं अलग से?
देखा गया है कि गुस्से के कई रूप होते हैं जिन्हें आदमी समझता नहीं है। आदमी तो बाहर का गुस्सा बड़ी जल्दी से पहचान लेता है, क्योंकि उससे हम परिचित हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक आज कहते हैं कि जब हम किसी से नाराज भी होते हैं, जब हम कहते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, जब हम ये कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, मैं इस व्यक्ति से नजर नहीं मिला सकता, मैं इसे सहयोग नहीं दे सकता, तो ये सब भी गुस्से के ही रूप है। जब हम इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, धीरज गंवा देते हैं, छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो ये भी गुस्से के ही रूप है। इसलिए गुस्सा के बड़े रूप तो सब जानते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे रूप भी गुस्से के हैं। और मैं समझता हूं, अगर बड़ा गुस्सा अगर किसी के पास ना भी हो, ये छोटे छोटे गुस्से तो सबके पास हैं ही।
जी भाई जी। तो दोस्तों, हमें इन सारी बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मायूस हो जाना, हताश निराश हो जाना, किसी की मदद नहीं करना, किसी से नजरें फेर लेना, किसी को रास्ते में आता हुआ देख करके वो रास्ता ही बदल लेना, अगर ये गुस्से के रूप हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये गुस्सा हमें ही नुकसान पहुंचाने वाला है। और हमें ये चेकिंग करनी होगी कि हमें किस तरह से ये बीमारी लगी है और किस तरह से इससे छुटकारा पाना है। इस बात पर तो चर्चा हमारी चल ही रही है। ओमकार भाई, आज भी आपने बहुत सरल शब्दों में गुस्से के प्रकार, गुस्से के रूप, और ये जो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सरल सरल उदाहरणों के माध्यम से हमें बताई हैं, हम किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। धन्यवाद
दोस्तों। आज की इस कड़ी में हमने जाना कि गुस्से के क्या प्रकार होते हैं और कितने रूप लेकर के आता है गुस्सा। शायद हम उसे गुस्सा मानते भी नहीं थे। आज हमने जाना कि किस तरह से हमें परिस्थितियों में सकारात्मकता का चश्मा पहनना है, और गुस्से का कारण उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में भी फायदा ही देखना है, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष। धीरे धीरे गुस्से रूपी विकराल राक्षस से हम जरूर निपटेंगे। इसके समाधान पर और चर्चा करेंगे। आज की कड़ी में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।